नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण कानून पर सच्ची भावना के साथ अमल करने का समय आ गया है, ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ संपन्न कराए जा सकें। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे महिला आरक्षण कानून के मुद्दे पर सहमति व्यक्त करें। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी के कावाखाली में विशाल परिवर्तन संकल्प रैली में शामिल होंगे। वे दार्जिलिंग हिल्स और जलपाईगुड़ी जिलों के 13 भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री मोदी कल शाम सिलीगुड़ी पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच सिलीगुड़ी में रोड शो किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 अप्रैल को सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनाव रैली करेंगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में डीएमके के कुशासन को उजागर कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और राज्य के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की विकास की रूपरेखा सामने रखी। श्री मोदी ने कहा कि वे कल शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक चली ऐतिहासिक वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका। श्री वेंस ने कहा कि मुख्य मतभेद ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर है। उन्होंने बताया कि अमरीका ने ईरान के समक्ष अंतिम प्रस्ताव रखा है और अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इससे पहले ईरान सरकार ने सोशल मीडिया संकेत दिया था कि कुछ मतभेद होने के बावजूद संवाद जारी रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात में कल विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसमें क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलाव और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई। सरकार ने कहा है कि उर्वरक संयंत्रों को आवंटित कुल गैस की मात्रा में 5% की वृद्धि की जा रही है। इससे ये 6 महीने की औसत खपत के लगभग 95% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि लगभग 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया में संचालित भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। एलपीजी लेकर भारतीय पोत जग विक्रम ने कल सुरक्षित रूप से होर्मुज क्षेत्र पार कर लिया। इसमें 24 नाविक सवार हैं। ये लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है। इसके 15 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की संभावना है। सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 21.5 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रूपये कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विमानन ईंधन पर भी निर्यात शुल्क 29.5 रूपये से बढ़ाकर 42 रूपये किया गया है। वहीं पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 0 रहेगा। बिहार के कटिहार जिले में कल हुई भीषण दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रूपये देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आशा भोसले को सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कल भारत के सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीत लिए। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से और शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस तथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।